समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार वैष्णवी, एंड हेलो एंड गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड एज वैष्णवी मेंशन्ड, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi flags off 3 Vande Bharat trains from KSR railway station in Bengaluru, also launches Yellow Line metro service connecting Electronic City with Bommanhalli.
Sena Pramukh General Upendra Dwivedi ne kaha, Operation Sindoor ki disha tay karne ke liye teenon sena pramukhon ko puri chhoot di gayi thi.
In Jammu and Kashmir, fresh encounter breaks out between security forces and terrorists in Dal area of Kishtwar.
मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है।
एंड रमेश पोखरियाल बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल सिक्योरिंग ब्रॉन्ज इन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स इन महाबलीपुरम तमिलनाडु। Now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we'll talk about World Lion Day. Yes, today in Dateline, we're talking about World Lion Day, celebrated every year on August 10. Today, we are roaring into action to raise awareness about one of the planet's most iconic and majestic creatures, the lion. For centuries, lions have been a symbol of strength, pride and courage. But today, they face a reality far from the royal image we often associate with them. Their numbers are dropping, their habitats shrinking, and their future depends on us.
Hakuna Matata ain't no peasant craze.
It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy.
Hakuna Matata.
रेशमा, भारत में हमारे पास काफी कुछ खास है, जैसे एशियाई शेर जो धरती पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता, और आज हम संरक्षण की एक सफलता की कहानी का जश्न मना रहे हैं। 2025 के शेरों की जनगणना के अनुसार गुजरात में अब लगभग 891 एशियाई शेर हैं, जो एक ऐतिहासिक संख्या है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये आशा, दृढ़ता और वन अधिकारियों, समुदायों और संरक्षणवादियों के समर्पित प्रयासों का प्रतीक है।
एब्सोल्युटली, अ न्यू स्टार इन दिस जर्नी इज द बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर पोरबंदर। वंस अ फॉरगॉटन लैंडस्केप, बारदा इज नाउ इमर्जिंग एज अ न्यू हैबिटेट, हेल्पिंग रिड्यूस प्रेशर ऑन द ओवरक्राउडेड गीर नेशनल पार्क एंड अलाउइंग लायंस टू रोम, हंट एंड थ्राइव वंस अगेन।
Once a secondary habitat, Barda Wildlife Sanctuary now flourishes with 17 lions and 25 leopards, reflecting years of ecological restoration and scientific management. The Forest Department's use of radio collars and real-time tracking technology has made lion conservation more effective than ever before. Community participation, especially by local Maldhari pastoralites, has made conservation truly inclusive and citizen-centric. With 891 lions now in Gujarat and over half outside Gir, Project Lion's habitat expansion has set new benchmarks for sustainable wildlife management. Today, the sanctuary is an example of India's vision of balanced development, Vikas Bhi, Virasat Bhi, blending progress with the preservation of precious natural heritage. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
तो चलिए अब आपको एक बात बताते हैं जो आपको शायद हैरान कर सकती है। शेर सिर्फ खूंखार शिकारी ही नहीं होते, वे सहानुभूतिपूर्ण और बुद्धिमान जानवर भी होते हैं। शेर भोजन पाने के लिए पहेलियां सुलझा सकते हैं। ये एक उच्च स्तर की बुद्धिमता है जो पशु जगत में दुर्लभ है।
Yes, and with their size, strength, huge teeth and massive paws, it only takes one roar to see why lions are called the kings of the jungle. They are seen across the world as symbols of courage and strength. Lions are also very social animals and are the only big cat to live in a group called a pride.
आपको शायद ये पता होगा या नहीं, पर चलिए आपको बता देते हैं। इंसानों की तरह शेर भी जम्हाई लेते हैं। एक शेर जम्हाई लेता है और जल्द ही पूरा झुंड जम्हाई लेने लगता है। ये सामाजिक जुड़ाव और यहाँ तक कि सहानुभूति का भी संकेत है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शेर को जम्हाई लेते देखें तो याद रखें, वे सिर्फ नींद में नहीं है।
And Vaishnavi, let me share another interesting fact about lions, that they are the lions. In their case, the ladies are in charge. Lionesses do nearly all of the hunting and bringing food to the entire pride. They are also responsible for raising the children and typically give birth to a litter every 2 years, which could be anything between 1 and 4 cubs.
जी बिल्कुल, इस शेर दिवस पर हमें शेरों की आबादी पर मंडरा रहे खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2001 से अफ्रीकी शेरों की संख्या में 43% की गिरावट आई है, यानी लगभग आधी संख्या सिर्फ 2 दशकों में ही गायब हो गई है। इनकी वजह है आवासों का विनाश, मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध शिकार और यहाँ तक कि शेर पालन भी।
Yes, lion farming is real. Thousands of lions are bred in captivity, not for conservation, but for their bones and body parts, used in traditional medicines. Despite no scientific proof of effectiveness, these majestic animals suffer short, brutal lives, all for profit.
तो रिश्मा, फिर हम शेरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं?
We can take a few steps, like support ethical wildlife tourism, say no to products made from lion bones or parts, support organizations working to protect habitats and stop illegal wildlife trade, and most importantly, spread awareness.
जी, चाहे आप गुजरात में हो, घाना में हो या दुनिया के किसी भी ऐसे हिस्से में जहां शेरों की आबादी हो, याद रखें कि शेर एक वैश्विक खजाना है और उन्हें हमारी आवाज की जरूरत है। इस विश्व शेर दिवस पर आइए शेर की सिर्फ उनकी ताकत की प्रशंसा ना करें, आइए अपने कार्यों, अपनी जागरूकता और सुरक्षा की इच्छा शक्ति से उनका सम्मान करें, क्योंकि शेर जब दहाड़ता है तो वे सिर्फ जंगल की आवाज नहीं होती, ये अस्तित्व की पुकार होती है। अगली बार तक जागरूक रहें और हमारे वन्य जीव रत्नों की रक्षा करें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में दिल्ली पुस्तक मेला राजधानी के पुस्तक प्रेमियों को अपने विस्तृत पुस्तक संग्रह और भारी छूट से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पुस्तक मेले के 5वें और अंतिम दिन लोगों को काफी भीड़ आज देखने की मिल रही है, चाहे वे ज्ञानवर्धक किताबों को खरीदते कॉलेज और स्कूली छात्र हो या फिर मनोरंजन के लिए आए पूरा परिवार हो। दिल्ली पुस्तक मेला ने हर किसी की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
धार्मिक ग्रंथों से लेकर कॉमिक बुक्स, उपन्यासों से लेकर सजावटी वस्तुएं, मेले में विविध विषयों पर भारतीय पुस्तकों और अन्य उत्पादों का एक विशाल संग्रह मौजूद है। यह मेला व्यावसायिक लेन देन, नए संपर्क स्थापित करने, सह प्रकाशन व्यवस्था, अनुवाद तथा कॉपीराइट व्यवस्था और पुरानी दुर्लभ पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए एक अनूठा मंच रहा। इस दौरान कई सम्मेलन, पुस्तक विमोचन और लेखकों से भेंट करने के कार्यक्रम भी हुए। आज के तकनीकी निर्भर समाज में साक्षरता और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने में पुस्तक मेले ने अहम योगदान दिया। वहीं आगंतुकों के बीच भी काफी उल्लास देखने को मिला। दिल्ली पुस्तक मेले का विषय इस वर्ष पुस्तकें और प्रकाशन, बहुभाषी भारत का भविष्य है। परिक्रमा के लिए आदर्श।
एक जिला एक उत्पादन योजना उत्तर प्रदेश के लिए कई मोर्चों पर लाभकारी साबित हो रही है। इससे जहां स्थानीय और परंपरागत उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है, वहीं अब ओडीपी उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण उत्तर प्रदेश ने निर्यात के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश से विभिन्न देशों में किए जाने वाले निर्यात में पिछले 5 सालों में 53% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी।
उत्तर प्रदेश से पिछले साल सर्वाधिक 35,545 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात अमेरिका को किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर यूके और तीसरे पर जर्मनी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश से ओडीओपी उत्पादों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल, फुटवियर, कालीन, ज्वेलरी का सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है। वहीं एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन होने के बाद सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल की वैश्विक मांग बढ़ गई है। ओडीओपी योजना के तहत घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में काला नमक चावल को कांस्य पदक का पुरस्कार भी मिला है। राज्य सरकार ने बीते वर्षों में इसके लिए बीज वितरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे कई स्तरों पर काम किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि काला नमक चावल को इस साल पुरस्कार मिलना स्थानीय प्रशासन और किसानों के साझा प्रयासों की सफलता है।
काला नमक चावल भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है और सिद्धार्थ नगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने एआई टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं।
काला नमक चावल अपने खास स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है और अब इसकी वैश्विक डिमांड बढ़ने से न केवल किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी प्रदेश से इसके निर्यात के रास्ते खुलेंगे। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लद्दाख हलमन एप्रिकॉट इज मेकिंग इंटरनेशनल डेब्यू विद इट्स मेडन एक्सपोर्ट टू गल्फ कंट्रीज। द फ्लैग ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA इन अ सेरेमनी एट लेह। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
In a landmark moment for Ladakh's agri export potential, the first ever consignment of fresh Halman apricot was flagged off to Saudi Arabia, Kuwait and Qatar. The virtual flag off was conducted by the chairman of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, while Rudra Gao PT, Administrative Secretary, Industries and Commerce, UT Ladakh, led the physical ceremony in Leh. A total of 1.5 metric tons of premium Halman apricot saw from the pristine high-altitude belt of Kargil and supplied by MS Halman Apricot Kargil were shipped after undergoing rigorous quality checks and international standard packaging supported by APEDA's export facilitation. Known for their sweetness, rich flavor and long shelf life, Halman Apricot are a traditional crop of Ladakh's high-altitude valleys. The export initiative comes under APEDA's One District, One Product and Vocal for Local Global Outreach mission aimed at promoting indigenous produce to global consumers. Official held the effort as a model of successful collaboration between farmers, FPOs, government bodies and private exporters. APEDA's regional head for J&K and Ladakh said, "This milestone is a tribute to the potential of Ladakhi produce and a boost for rural economy and global branding." MS Fair Export India Private Limited noted a rising demand for Himalayan origin fruits in Gulf market and committed to scaling up procurement in future seasons. The flag off event saw participation from horticulture officials, local entrepreneurs, FPO members and administration representatives, all celebrating a new chapter for Ladakh's agri-business landscape. Talking to Parikrama, Administrative Secretary, Industries and Commerce, UT Ladakh, Rudgaut PT said that,
"Today we are shipping 1.5 tons of Halman apricot from Kargil to three different countries, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar. So APEDA is facilitating in this. So we'll be looking for exporting to more geographies in the future through APEDA."
With this successful maiden export, the Halman apricot steps into the global spotlight, offering new opportunities for economic growth and farmer empowerment in the region. For Parikrama, with Khurshid Yusuf, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिला में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस महोत्सव पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 से 10 अगस्त तक 4 दिवसीय इस महोत्सव की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य राज्य के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र समतल के अलीपुर द्वार से पुरुलिया तक रहने वाले आदिवासी समुदाय के हितों व अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके विकास को प्रोत्साहित करना था। हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को केंद्र कर राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका समापन आज होगा। विगत 7 अगस्त से आरंभ इस आदिवासी दिवस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारग्राम की एक सभा से विधिवत रूप से किया। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य के दार्जिलिंग पहाड़ से लेकर समतल के अलीपुर द्वार से पुरुलिया तक फैले आदिवासी समुदाय के हितों व अधिकारों की सुरक्षा करना तथा उनका विकास करना है। आदिवासी समुदाय रहने वाले प्रत्येक जिलों में बीते कल 9 अगस्त को विभिन्न आदिवासी संघ संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की तथा जातीय परिधानों में सुसज्जित समृद्ध लोक सांस्कृतिक व परंपराओं का अनूठा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के चंपासरी में भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस 4 दिवसीय आदिवासी महोत्सव में सरकार द्वारा वन्य भूमि अधिकार योजना के तहत चलाए जा रहे अभियान तथा जय जोहार योजना, आदिवासी विकास बोर्ड आदि कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर झांकी सहित शोभा यात्राएं निकाली गई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का थीम भूमिपुत्र तथा कृत्रिम बुद्धिमता, अधिकारों की रक्षा तथा भविष्य को आकार विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने प्रकाश डाला। सामाजिक विकास तथा सौहार्द, आदिवासी अधिकार, सम्मान व मर्यादित व्यवहार आदि विषयों पर भी कार्यक्रमों में जन जागरण का प्रयास किया गया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शंग।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स, रमेश बुधियाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल, सिक्योरिंग ब्रॉन्ज इन द ओपन मेंस कैटेगरी इन महाबलीपुरम तमिलनाडु टुडे। बुधियाल आल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रीच द मेडल राउंड, स्कोर 12.6 पॉइंट्स टू फिनिश थर्ड। कोरियाज कनोवा हीजाए took gold with 15.17 points, while Indonesia's Paja Ariana claimed silver with 14.57.
एशियाई रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में श्रीलंका ने चीन को हराकर पुरुष वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल आज सुबह बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने दबदबा बनाते हुए चीन को 26-17 के अंतर से हरा दिया। टूर्नामेंट के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन और अंकों के दम पर श्रीलंका पुरुष वर्ग में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का प्रबल दावेदार है।
Moving on to golf, India's Diksha Dagar displayed remarkable resilience at the PIF London Championship, fighting back from a mid-round setback to finish with a solid 3-under-70 in the opening round. Her performance placed her tied 10th at the prestigious Ladies European Tour event held at the Centurion Club, a par 73 course in the UK. The rest of the Indian players had mixed outings, with Aditi Ashok posting an even par 73, placing her T37.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember former President of India, Varahagiri Venkatagiri, who was born on the 10th of August, 1894. He worked in the interest of the working class against the imperialist British government. He was also the only trade union leader to have become the President of India.
I feel proud and honored by the citizens of Delhi to be present here on this great and memorable occasion, the eve of our Independence Day. This is not the time, if I may say so, for making speeches, but it is the time for action. In the first instance, we should remember the great martyrs, our great leaders, our father of the nation, our ex-prime ministers who have sacrificed their all for securing independence.
After early education at Berhampur and Madras, Giri went to Ireland in 1913 to join the King's Inn at Dublin. In Ireland, he came in close contact with leaders of the Irish resistance movement like Eamon de Valera, the long-serving Prime Minister of the mid-1900s. He met Mahatma Gandhi in 1914 when Gandhiji visited London, and Giri went to meet him as a young student.
On return, Giri enrolled himself in the Madras High Court, but left a lucrative practice and joined the freedom movement around 1920-21. He was first arrested in 1922 in connection with the picketing against auction of liquor shops.
Giri was the founder member of the All India Railway Men's Federation and attended the second roundtable conference in London in 1931. He led the Bengal Nagpur Railway strike in 1927. And ultimately forced the British management and the government to negotiate with the workers in a landmark movement. Giri made history with his victory over the Raja of Bobili in 1937 in elections to the Madras Legislative Assembly.
After his victory, Giri joined the provincial government as Labour Minister under Rajaji. He was once again Labour Minister of Madras under T. Prakasham in 1947, but resigned that post to go as India's High Commissioner to Ceylon. Giri also served as Governor of UP, Kerala and Karnataka.
Giri became Vice President in 1967, and after the untimely death of President Zakir Hussain in 1969, he became the acting president. Giri served as President of India from 1969 to 1974. During this period, several sweeping changes took place at home and abroad.
Banks were nationalized. Privy purses to erstwhile princes of British India were withdrawn. East Pakistan became Bangladesh after more than 10 million refugees flooded India. V.V. Giri was awarded Bharat Ratna in 1975 for his public service.
We also remember freedom fighter Vinod Kinariwala, who died on the 10th of August 1942. Born on the 20th of September 1924 in District Ahmedabad, Gujarat, Kinariwala actively joined the Quit India movement that was launched on the 8th of August 1942.
When the students of Vinod Kinariwala's college in Ahmedabad gathered in its compound to raise anti-British slogans and give the Quit India call on the 10th of August 1942, the Assistant Superintendent of Police reached the place along with his police force and ordered firing on the students. Vinod Kinariwala was killed in the firing on the spot.
We pay tribute to martyr Kunar Singh, a resident of Jhansi, Uttar Pradesh, who led the forces in fighting against the British during the First War of Independence. He also provided financial support to the independence activists.
Kunar Singh was arrested by the British Army and put on trial on the charges of plundering, murder and instigating rebellion against the British. He was sentenced to be hanged by the neck till death on the 10th of August 1858.
आज आचार्य बलदेव उपाध्याय की पुण्यतिथि है। आचार्य बलदेव उपाध्याय, जिन्होंने संस्कृत और हिंदी साहित्य को नई रोशनी दी, एक महान विद्वान थे। उनकी रचनाएं जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास और भारतीय दर्शन ने प्राचीन ज्ञान को सरल हिंदी में पेश किया। उनका जीवन साहित्य और शिक्षा को समर्पित था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 48 वर्षों तक पढ़ाने के बाद उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध की नई दिशा दी। 10 अगस्त 1999 को आचार्य बलदेव उपाध्याय ने दुनिया को अलविदा कहा, मगर उनकी विद्वता सदैव अमर रहेगी।
And listeners, August 10 is the death anniversary of P.C. Alexander, an IAS officer of 1948 batch who served as the governor of Tamil Nadu from 1988 to 1990 and as the governor of Maharashtra from 1993 to 2002. He was considered as a candidate for the post of the President of India in 2002. During his tenure in Maharashtra, he had the additional charge of Goa from 1996 to 1998. He was also a member of the Rajya Sabha representing Maharashtra as an independent candidate from 29 July 2002 to 2 April 2008.
आज पुण्यतिथि है हरिशंकर परसाई की। उन्होंने व्यंग को साहित्य की नई ऊंचाई दी। वे एक अनमोल लेखक थे। उनकी रचनाएं निकल पड़े तामाशाही और विकलांग श्रद्धा का दौर ने समाज की सच्चाइयों को हंसी के साथ उजागर किया।
Referring to death anniversaries, next in the list is the Mulla Mangalnath Parameshwaram Bhattathiripad, commonly known as M.P. Bhattathiripad from Aur, Premji. He was a social reformer, cultural leader and actor from Kerala. Premji joined Yogakshem Sabha and worked with V.T. Bhattathiripad, E.M.S. Nambudiripad and his brother M.R. Bhattathiripad in the fight against the casteism and conservatism that existed in the Nambudiri community. Premji was also a noted stage and film actor who won the National Film Award for Best Actor for the film Piravi.
Aaj punyatithi hai Shyam Lal Gupta Parshad ki. उन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा लिखकर देशभक्ति की मशाल जलाई। एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका झंडा गीत हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उनकी लेखनी ने आजादी के जज्बे को नया रंग दिया। पार्षद ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। सचिव पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने सामाजिक सवालों पर तीखी कलम चलाई। उन्होंने समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया। आज का ये स्वतंत्र आकाश ऐसी ही वीर सपूतों की शहादत का प्रतीक है।
And now let's talk about birth anniversaries today. On 10th August 1860 was born Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande, an Indian musicologist who wrote the first modern treatise on Hindustani classical music, an art which had been propagated earlier for a few centuries, mostly through oral traditions. During those earlier times, the art had undergone several changes, rendering the rag grammar documented in scant, old, outdated texts. Ragas used to be classified into raga, which was male, ragini considered to be female, and putra considered to be children. Bhatkhande reclassified them into the currently used thaat system. He noted that several ragas did not conform to their description in ancient Sanskrit texts. He explained the ragas in an easy-to-understand language and composed several bandish, which explained the grammar of the ragas.
भातखंडे ने बचपन से संगीत में अपनी रुचि दिखाई। कॉलेज की पढ़ाई के साथ उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकारों से प्रेरणा ली और संगीत के पुराने सिद्धांतों को नए रूप में पेश किया। भातखंडे ने देश भर घूमकर उस्तादों से बंदिश एकत्र की और रागों के मानक रूप निर्धारित किए। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तिकमाला और भातखंडे संगीत शास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे। 1916 में बड़ौदा में संगीत सम्मेलन आयोजित कर ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी की नींव रखी। विष्णु नारायण भातखंडे की मेहनत ने संगीत को सरल और समझने योग्य बनाया। आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त मशहूर संगीतकार, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। विशाल भारद्वाज, जिनकी फिल्में और संगीत ने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वे एक सच्चे कलाकार हैं। मकबूल, ओमकारा और हैदर जैसी उनकी फिल्मों ने शेक्सपियर को भारतीय रंग में ढाला। विशाल ने संगीतकार के रूप में शुरुआत की, माचिस और सत्या के गीतों से लोगों का दिल जीता। गुलजार साहब के साथ उनकी जोड़ी ने कजरारे जैसे गीत दिए जो आज भी गूंजते हैं। विशाल भारद्वाज आज भी नई कहानियां रच रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।
ओ साथी रे, दिन डूबे ना, ओ साथी
And today is also the birthday of the 20-year-old Indian chess grandmaster Ramesh Babu Pragyananda. He is a chess prodigy and the fourth youngest person ever to achieve the title of grandmaster behind Sergei Karjakin, Gukesh D and Javokhir Sindarov.
आज प्रेम अदीप का भी जन्मदिन है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में पौराणिक किरदारों को अमर बनाया। वे एक अनमोल सितारे थे। भारत मिलाप और राम राज्य में भगवान राम की उनकी भूमिका ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। प्रेम ने अपने अपने करियर की शुरुआत छोटी भूमिकाओं से की, मगर फिल्म तलाक 1948 में आई उनकी इस फिल्म ने उनकी प्रतिभा को चमकाया। सत्य और लगान जैसे उनके किरदारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। प्रेम अदीब ने पौराणिक और सामाजिक दोनों तरह की फिल्मों में अपनी अमर छाप छोड़ी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और रेशमा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।